रखे हुए हैं और मैया उनकी कथा सुना रही हैं और उनका सुंदर मुखारविंद देख रही हैं, उसमें यशोदा जी के हृदय में कैसी अद्भुत अद्भुत लहरें उठ रही हैं। बात चल जा रही है, कभी चुम्बन करती हैं, कभी गोदी में लेती हैं, कभी कुछ करती हैं, यानी सौभाग्य का कोई ठिकाना। ब्रह्मा जी को ऐसा मिला कभी न, शंकर जी को या लक्ष्मी जी को या कौन भक्त को ऐसे सदा और लोगों कृष्ण ने अपने ऐसे हाथ पिखलाए चंद्र की तरफ बार बार दिखला रहे हैं। अब उनका ध्यान दूध पीने से या कथा सुनने से हट गया उधर ही अब देखने। उसने कहा जी यशोदा जी पूछती हैं मैया बेटा क्या चाहिए, तो वो चांद की तरफ अरे मक्खन लेगा है मक्खन बस वही जो कुछ कहो वो बस वही इशारा कर और तुनक गए। तुनक ना माने समझते कोई भी कारण नहीं है वो करने लगे और ऐसे ऐसे हाथ मलने लगे। वो सुधा और निराली यशोदा जी को अघाती नहीं है वो देख कहते बेटा वो मक्खन नहीं लेना चाहिए। भैया क्यों नहीं लेना चाहिए, ये इसमें विष लग गया, कैसे विष लग गया, तो देवता दानव इसको समुद्र मंथन कर रहे थे। बड़े आश्चर्य से सुनने लगे कान लगा कर छोटा सा मां उनको पता नहीं, अच्छे उनको पता है कि नहीं
और सब भूल गए हैं
और बड़े उत्सुक होकर के मैया को बेटा उनका मामा के घर की बातें सुना रहा है, उनको सब पता है तभी सुन रहे हैं, उस समय उनको याद ही नहीं। वो कह रही हैं इसको लोग खाते नहीं, तुम्हारे खाने योग्य नहीं, क्यों, तो देवता और दानव दोनों मिलकर के समुद्र मंथन कर अमृत पीने के लिए उसमें अमृत, किंतु पहले ही निकल गया बीज। मैया क्या हुआ हूं करने लगे। उन्होंने कहा शंकर जी को बुला लिया, भोले भाले शंकर जी, और उनको वो विश्व जब जलने लगा तो शंकर को दे दिया और शंकर जी ने इसको गले में रख लिया। मैया गले में क्यों रख लिया, तो इसलिए रख लिया कि उनके हृदय में ठाकुर जी है ना, तो विष वहां जाएगा तो उनको जला देगा, उनको कष्ट होगा, इसलिए गले में रख लिया, इसलिए इनका नाम। अच्छा मैया और सब तो क्या हुआ, तो इसी तरह से मंथन करते 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 ये माखन का बड़ा भारी अंत में लौंदा निकला, गोलाकार निकला ये पीस। फिर वो जो विष का पहले जो निकला था उसका छींटा इस पर पड़ गया, इसलिए बीच में वो काला देख रहा है ना वही बीच है, इसलिए देवता दानों दोनों में से किसी ने नहीं लिया, बेटा तुम ही लो। ऐसे करते हुए अब थक के देते देते कृष्ण जी चुपचाप, यशोदा जी को नींद नहीं आ रही, कितना सुंदर मुखड़ा, कितना भाव उनके अंदर में बात्सल्य भाव, यदि सो जाएंगी तो बच्चे की देखभाल कौन करेगा, इसी चिंता में डूब रही हैं और तरह तरह की बातें याद आ रही हैं कृष्ण संबंधी। इतने में नंद बाबा उठा रात में, अरे अभी तो सोई नहीं तू, तो ये धीरे से बोली ये बच्चा जगने गया और फिर वहां धीरे 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 वहां से उठ करके बातचीत कर कृष्ण के सुन कैसे सो, न तो नींद आती है और सो भी कैसे, तो मैं हूं तू सो जा, पति आप सो जाइए मैं जाऊं, ऐसे बातचीत करते हुए और बाल्य की लीला का वर्णन करते हुए दोनों प्यास करते 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 सवेरा हो गया, रात हो गया। इसी तरह से उनका दिन बीत गया। इतना समय किसको का ब्रह्मा को ना शंकर को ना ये सब बात संदिग्ध इसमें रस, इसलिए कहते हैं नेमं ग्रंथो शंकर जी को ऐसा कहा। शंकर जी हनुमान ये ब्रह्मा जी आए तो कृष्ण का कुछ सख्य भाव का वो लीलाएं देखी, वो लीलाएं भी उनको दिख नहीं पड़ी, विषम्भ लीलाएं सख्य भाव की भी नहीं देख पड़ी, उनको ये देख पड़ी जैसे इसमें से उसका तेज उसमें निकल गया, देखें अब क्या करता है, बच्चनों को चोरी कर ले कर दिया, अब देखें जो ये क्या करते हैं। और उन्होंने देखा समस्त जितनी लठिया थी उनकी कमलिया थी, जितने बच्चे थे बछड़े थे वो सब कृष्ण बने, सब पहले चतुर्भुज हो गए और चतुर्भुज के बाद में द्विभुज बन गए और उसके बाद में एक ही लड़का बस वो मुख सूखा हुआ मतलब चावल और
चावल
और दही इसका कवल रखे हुए और मुख सूखा हुआ चारों तरफ में खोज रहे हैं बछड़े की घर गए बस उनके चरणों में गिरने पर कहाँ बाल्य रस सखरस का भोग कहाँ किया। कृष्ण इनके तरफ में देखा नहीं। शंकर जी सुनते हैं कि आए गोपियों का भी शरीर बनाया किंतु गोपियों का रसास्वादन ये नहीं कर सकते। बाल लीला के समय भी आए गोकुल में गए बस दर्शन किया और ढोल झट मैया ने उनको छिपा। मैया के अधिकार की बात है, मैया चाहे तो दर्शन दे चाहे ना दे, उनको छिपा दिया इन्हें उनको भी लक्ष्मी जी के तब हुआ नहीं, बेल में अभी अपनी तपस्या कर रही थी तो ये प्रसाद नहीं मिला। प्रभु कहे यो उत्तम यो उत्तम उत्तम किसको कहते हैं
तमो जस्मा देते उत्तम
नहीं श्रेष्ठ होता है ना श्रेष्ठतर नहीं
श्रेष्ठ श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम
कोई श्रेष्ठतम को ही उत्तम
तम उत्तर
पहले नहीं तम
द्वियर मध्य वैशिष्ट सेखने तर शब्द
तो यहाँ पर उत्तम कहा किंतु परम उत्तम नहीं कहा, अभी उत्तम चल रहा है इसीलिए उत्तम है। अयोध्या में बैकुंठ में तो है ही नहीं है और कहीं कहीं कुछ भी है थोड़ा सा जैसे अयोध्या में कुछ है, अयोध्या में है आधा माना जाता है, दशरथ वाला माना नहीं जाता और कौशल्या वाला माना जाता है, तो कौशल्या में भी कुछ ऐश्वर्य की भावना है ना, चार भुजाओं का रूप देखा भाई प्रकट
कराला
कौशल्याधिकारी चतुर्भुज रूपधारी
अस्तुतिजोरी
और देखा जी चार हाथ हैं और फिर स्तुति जोड़ दी। यशोदा मैया स्तुति करेंगी उनका मुंह में अंगुली लगा करके ऐसे कर दे वो स्तुति नहीं, इसलिए उन्होंने राज से पूछा ये इससे भी उत्तम कुछ हो तो कहो, उत्तम तो आपने बतलाया अब उत्तम बतलाओ और भी उत्तम। राय कहे कांत भाव प्रेम शब्द सा उन्होंने कहा सर्वसाध्य बतलाया था बात कर लेते, अब यहां पर कांत भाव को प्रेम साध्य साध बतला कांत भाव किसको कहते हैं। जगत में कांत भाव नहीं है बस अपराकृत राज्य में ही कांत भाव हो सकता है। सेविकाएं हमारे ये कांत हैं ऐसा भाव लेकर जब उनकी रसोमयी उपासना करती हैं, संबंधानुवाद से नहीं केवल कामात्मिका होकर, तब उसको कांत भाव कहा जा सकता। इसमें पहले बतलाए हुए समस्त जितने प्रकार की विशेषताएं हैं सब इसमें हैं, और अपना एक अलग से भी निष्ठा भी है, सेवा भावना भी है और विगत संभ ऐश्वर्य भाव इत्यादि दूर कर प्रेममयी ममता भी उनमें है, लालन और तारण भी है, धर्षण भी है। यशोदा कितनी भर्सना करती है,
इससे परिपूर्ण कामकता नहीं सब।
और गोपियों की भर्सनाएं परिपूर्णतम मात्रा में होती है। और इसके अतिरिक्त एक और भाव है जो इसी में नहीं, सर्वांग दिए करें सेवन, अपने समस्त अंगों और समस्त भावनाओं के द्वारा उनकी सेवा, उसमें भी अपना कोई स्वार्थ नहीं। इस भावना में, कांत भाव में आत्मा रमता से लेकर और अंत में पार्थिय मधुर भाव तक तक ये विस्तृत राज्य है। कहां से आरंभ हुआ है?
शांत,
शांत में आत्मा रमता जहां है वहां से लेकर और प्रेम की पराकाष्ठा परकिया भाव जहां जिसमें महाभाव से आरंभ हो करके और चित्त जल इत्यादि मादन मोदन मोहन समस्त चरम सीमा तक उसकी वहां तक ये
व्याप्त।
इसमें पहले ही ये गोपियां होती हैं, ये पहले ब्रज के अतिरिक्त और कहीं नहीं होगा। कुछ आंशिक भाव आभास दूसरी जगह हो सकता है, इसलिए इस चीज को समझने के लिए आंख खोल करके सभी अच्छी तरह से देख करके सुनो, क्योंकि यही काम आएगा। साधन में जो मिलेगा वही साधन में मिलेगा। साधन में अभी हम पढ़ते नहीं है उस वस्तु को, अध्ययन नहीं करते हैं, सीखेंगे नहीं, तो साध्यावस्था में कैसे मिलेगा? यदि हम साधन में वकालत हमको पास करना है तो हमको साधन में क्या करना पड़ेगा? लॉ कॉलेज में भर्ती होना होगा ना, और उसको विधिवत अध्ययन करना पड़ेगा, तब तो वो सिद्धि में वो होगा। ऐसे ही साधन में हम जो कुछ सीखेंगे और जो कुछ करेंगे सिद्धि में वही, और अभी हम उससे एलूफ रहेंगे तो वो चीज हमको प्राप्त नहीं होगी। खूब ध्यान के साथ में सुन कर, ये पांच प्रकार की दुकानों पर चीज हैं, पांच दुकानें लगी हुई हैं, अपने अपने सामर्थ्य से और गांठ के सामर्थ्य से, पैसे के सामर्थ्य से आदमी और रुचि के अनुसार में उन पांचों दुकानों में से किसी एक दुकान पर जाए, माल देखेगा और जिधर जिसकी रुचि हुई उसी दुकान में जाकर के अपने सामर्थ्य के अनुसार उस वस्तु को लेगा। तो इसीलिए इसका वर्णन कर रहे हैं, इनमें से खरीदार है वो देखेगा कि हमारे गांठ में कितना पैसा है, अर्थात तो हमारी श्रद्धा किस किस्म की है। श्रद्धा के ऊपर में सब कुछ निर्भर करता है, श्रद्धा अनुसार कनिष्ठ मध्यम उत्तम इसी के ऊपर में निर्भर कर, जिसकी जैसा श्रद्धा रहेगी उसी यही मूल्य है उसका, उसी के अनुसार वो दुकान में जाए। जिसके गांठ में पैसे नहीं है वो सुनार के दुकान में जाएगा सोने चांदी के, और हीरा का व्यापारी हीरा की दुकान में वो जाएगा जिसको कुछ जरूरत नहीं, ऐसे ही इसको समझ लो, इसको तीन भागों में विभक्त करो, एक साधारण रति, सामान्य रति जिसको, सामान्य रति, एक होता है सामंजस्य रति और एक होती है समर्था रति। तीन प्रकार की रति, रति माने यहाँ पर क्या समझो, प्रेम, प्रेम माने हाई हाउस मंदिर, इसको समझो।
पूजा के बाद जो भाव है
इसमें भी, अब हम कांत रस का विचार कर रहे हैं, कांत रस में ही विचार कर रहे हैं, इसलिए एक साधारण रति और जिसको सामान्य रति, और दूसरा हुआ सामंजस्य, सामंजसा, और तीसरा हुआ
समर्था,
जिसमें साधारण रति, रति किंतु है, इस चीज को मत भूलो, साधारण वो जगत का काम नहीं है,
कृष्ण के प्रति रति है,
कृष्ण के प्रति रति है, कृष्ण के प्रति हो गई है, किंतु साधारण जगत का काम भोगों से युक्त होकर के सड़े गले लोहे के समान है, जिसमें मूर्छे चारों तरफ से पकड़ रखते हैं, इसकी कोई बात नहीं है, ये तो अंत तक जहां तक हो जितना भी विशुद्ध होगा ये काम से परिपूर्ण है, और ये सदा ही दुखमय दुखदायी होता है। जैसे जगत में नल दमयंती का प्रेम और
सावित्री सत्यवान,
सावित्री सत्यवान का है, और किसका, हमारे शास्त्री भी हूँ, वो ब्राह्मण, ब्राह्मण कुष्ठ ब्राह्मण और उसकी दत्तात्रेय और नहीं अनुसूया, ये सब प्रसिद्ध है, किंतु यहाँ तक सब काम है, अनुसूया जी का भी, जब अत्रि ऋषि के प्रति उनका पति भाव है तब तक वो पतिव्रता नहीं है,
चरम पतिव्रता
नहीं है, उनको घूमना पड़ेगा, किंतु उनका यदि यह भाव हो कि अत्रि ऋषि हमारे गुरु हैं और उनकी कृपा से हम भगवान के चरणों में हमारी प्रीति हो जाएगी, तब तो ये पातिव्रत धर्म के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, अन्यथा अत्रि ऋषि के प्रति ये रहे जो हमारे पति हैं, तो भगवान जो परम पति उनको छोड़ करके अभी संसारी कभी स्थिति है, इसलिए वो पातिव्रत धर्म ठीक है।
तो पार्वती के लिए क्या कहा जाएगा,
पार्वती जी का भी वैसे ही समझ लो, शिव जी को अपना गुरु मान करके और उनके माध्यम से नित्य लीला और जो अष्ट काव्य लीला इत्यादि का जो चिंतन करती हैं, इसलिए हम लोगों की गुरुवर्ग, ये नंदम्यांती और
सावित्री सत्यवान,
ये तो साधारण कोटि में, ये तो कोई गिनती में ही नहीं, शास्त्रकारों ने इनको गिनती में नहीं रखा, ये संसार के चक्कर में ये घूम रहे हैं, इन लोगों को ये लोग तो बस पति लोग जाकर के वहां से फिर भ्रष्ट होकर के चले आए, बस यही पद, उनका अपने ज्ञान नहीं हुआ तो फिर आगे कैसे जाए, इसलिए इन लोगों के लिए साधारणी रति नहीं हुई, रति जब होगी जब शुद्ध सत्व यहाँ पर प्रकटित होगा और वो कृष्ण भाव में विभावित होगी तब वो रति होगी, कुब्जा जब तक कृष्ण को नहीं देखा था तब तक उसकी प्रति, उसकी रति स्वच्छ मानी जाएगी, स्वच्छ है, कृष्ण को देखते ही रति कुछ विभावित हुई, कृष्ण ने उसको सुंदर बनाया, कंस के यहाँ इतना दिन तक सेवा करती थी किंतु किसी के प्रति उसकी लालसा नहीं हुई, जो पति के रूप में हमारा या कोई किसी से प्रेम नाता संबंध ये सब कुछ नहीं, निर्लेप रूप में उनके सभा में जाती, उनको वो दे आती, चंदन इत्यादि तिलक लगा देती, और भी लंगड़ी की टुकड़ी टुकड़ी उसको भी कोई जरूरत नहीं। कृष्ण को देखा, कृष्ण ने उसको सुंदर बनाया, उस समय में उसकी साधारणी रति कृष्ण के प्रति विभाव। साधारणी किस लिए कहा गया? जब तक उसमें संभोग की या काम की इच्छा है बस वहीं तक वो रहेगी, और जहां वो काम इच्छा कम हो गई ना तो रति भी कम हो, अंत में शांत हो जाएगी, वो दूर हो जाएगी। कृष्ण को जब देखा तब तक उसमें हुई, कृष्ण से मिली, और कृष्ण जब चले गए ना तो फिर उसके रति का कोई उल्लेख ही नहीं, बस ये। इसलिए जब जब तक वो अभिलाषा रहती है तब तक वो उत्तेजित रहती है, कुछ माने काम करती है, और इसके बाद में इच्छा बंद हो गई, शांत हो गई, बस उसके लिए न तो विरह होगा न कि स्थायी रति है, वो आकस्मिक उदित हुई और आकस्मिक, इसलिए इसको साधारण नहीं। किंतु रति है कृष्ण के प्रति और किसी के प्रति नहीं, अनन्य है, इसलिए इसको रति में ले लिया साधारण। इसीलिए उसकी जो प्रीति है प्रसाधारणी है, अतः सामयिक की बस समाप्त हो, और स्वार्थमयी है। प्रेम में जहाँ स्वार्थ है वहां पर प्रीति नहीं है, प्रेम नहीं है, वो रति नहीं कहलाएगी, इसलिए बस वही तक। अब सामंजसारती, ये द्वारकापुर की महेशियों की रति है, उनकी रति है, शुद्ध रति भी हो गई है, स्थायी भाव भी है उनका, ऐसा नहीं जो अभी उदित हुई और फिर शांत हो गई, वो स्थायी है। और उसमें कभी कभी कृष्ण से मिलने की इच्छा होती है, किंतु मर्यादा से बंधी हुई रहती है, ये इसमें है। रति के मूल में कुछ स्वार्थ भोग की कामना, लोक मर्यादा और धर्म की सीमा पार नहीं कर सकती, इसलिए इसको सामंजस आता है। क्या लोक मर्यादा, इनकी जो रति होती है लोक मर्यादा और धर्म की सीमा पार न हो जाए, बस धर्म की मर्यादा दोनों से बंधी हुई रहे, उसी के प्राचीर में बंद रहे,
सीमा के अंदर नहीं,
बस
कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको समझ।
विवाह से उत्पन्न होती है, विवाह से उत्पन्न होती है, इसलिए विवाह की मर्यादा से ये बंधी रहती है, इसलिए ये समंजसा है। जो साधारणी रति है वो गाढ़ी कभी नहीं होगी और स्थायी नहीं होगी, उसका ये लक्षण है साधारणी का। क्या बतला है?
स्थायी भी नहीं होगा, गाढ़ी भी नहीं होगा,
कभी गाढ़ी नहीं होगी और स्थायी भी नहीं होगी। और सामंजस्य वाली क्या है? स्थायी भी है और कुछ गाढ़ी भी हुई है, किंतु घन नहीं हुई है, घन माने बर्फ जैसा नहीं, वो दिखता है ना, हाँ विश्राम घाट में सबसे अच्छी मिठाई फूरचा, अभी फूरचा में नहीं हुई उसकी रबड़ी, अभी रबड़ी बनी है, उसमें कुछ कुछ अभी द्रवता है। ये लोक मर्यादा इसमें और विवाह के बंधन से मर्यादित नहीं होती, ये उसको पार करके एकदम जहां तक ये चली जा सकती है वहां तक ये चली जाए। गोपियों का ये समर्थ है, कृष्ण को वशीभूत करने में ये समर्थ है, उसमें समंजस होगी कि नहीं होगी, और उसमें तो एकदम है जो उसके वशीभूत है।
साधारण में अपने ससुर की उपासना और सामंजस्य में तद्गत भावना सहरसा में कोई सेवा समस्त सेवाओं को उल्लंघन करके
आप इसको उदाहरण दे के समझो। समस्त द्रव्यों में मणि श्रेष्ठ होती है ना? मणि है साधारण प्रेम, साधारण द्रव्य, और चिंतामणि है समंजसा, और कस्तुभ मणि माना गया गोपियों की समर्था। अब इसमें इसमें भी विचार किया गया, ये भी दो प्रकार की, मधुर रस भी कांता भाव भी दो प्रकार की, किंतु लक्ष्य द्वारका नहीं है। कांताएं भी कही जाती है, ये एक ब्रज की कांता और एक पूरी की पूर्वों की कांता माने द्वारका पूरी। किंतु तो अभी विचार यदि किया जाए पार किया करते तो सब कांता नहीं दास में पतिय भाव मधु कहा तो जाता है किंतु यथार्थ में नहीं। अब वो स्वकिया और स्वकिया विवाह इत्यादि के द्वारा पति भाव युक्त होकर के सेवा की भावना होती है, ये हुआ स्वकीय। और परकीय होता है दो प्रकार, एक कन्या का एक परोड़ा एक ही। कन्या का माने अनूढ़ा और दूसरा हुआ
परोड़ा।
एक और भी इसमें है, स्वकीय भी है ब्रज में। स्वकीय वह भाव है जो कृष्ण को पति के रूप में मानती हैं किंतु गांधर्व विवाह इत्यादि के द्वारा, जो कि कात्यायनी की पूजा करने वाली जो विशेष रूप से थी उनकी, जो कन्याकाएं थी पीछे से वो अपने को मानती हैं कि कृष्ण से हमारा विवाह हुआ, गांधर्व विवाह। और परोढ़ा कौन सी हैं? ललिता विशाखा चित्रा इत्यादि रूप मंजरी ये सब जो हैं ये परोढ़ा हैं। इनका दूसरी जगह में कृष्ण से विवाह न होकर के दूसरे से हुआ, ये यथार्थता हूँ इस भाव में किसी को पर किया कर। इसी में इनका लक्ष्य यहीं से है, इसी में परिपूर्ण मात्रा में संपूर्ण रत्न में इसी के लिए योगा या प्रेम, इसी के लिए आगे बतलाएंगे। नायम श्रियो अंग इसके लिए उदाहरण अब देगा अपने कथन के। द्वारका वाले को छोड़ दिया, साधारणी को भी छोड़ दिया, और इसमें भी सखी को छोड़ दिया,
सखी को छोड़ दिया,
सखियों को भी न सखी माने उनको लेंगे
रोज वाले काटता है,
हाँ वो उनको ले लेंगे, उनको लेते हुए चले।
पूर के सखियों को छोड़ दिया
है,
पूर द्वारका पूरे सखिया छोड़ दिया,
वो सब को यहाँ पर अनुभव और प्रौढ़ा दोनों को लिया और उनको भी लिया लेकर के। अब उसमें उदाहरण जो दे रहे हैं किंतु प्रिय नर्म शक्तियों के लिए दे रहे हैं, और उसमें जो सबसे श्रेष्ठ है उसके लिए दे रहे हैं, यहाँ उन लोगों के लिए दे रहे हैं, उन गोपियों के लिए दे रहे हैं। यहाँ पर सखी नहीं, नित्य सखी भी नहीं है, प्राण सखी भी नहीं है, प्रिय और
प्रिय नर्म
शक्ति, किंतु वो लोग भी हैं, लोग सभी नायन सियो नितांत रते प्रसाद सर्जोषिता नलिन गंध चांद हो अन्य रासो सवे अश्च भुज दंड गृहीत कंठ लब्धा शीशां जगजगार ब्रज सुंदर। यशोदा जी के प्रति कृपा का वर्णन पहले नेमन ब्रंचोल इत्यादि ने किया, सखाओं के प्रति कृपा का ये वर्णन अब यहाँ पर उन गोपियों की मधुर रस वाली कांता गोपियों का यहाँ पर पद है। न अयम श्रियो हे अंग हे प्रिय, ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? उद्धव जी उनकी महिमा वर्णन कर रहे हैं, गोपियां हैं और उनके सामने महिमा वर्णन करते अर्थाते नहीं है। ये आशा महोच्चारण रेणु के पहले वाला श्लोक। नायन सियो अंग अपने आप गदगद होकर के उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ये अंग नायम श्रियो नितांत रते प्रसाद, नितांत रते जो लक्ष्मी जी हैं, श्रिया श्रिया है ना, श्रिया श्रिया मैंने बहुवचन बहुवचन यहाँ पर बैकुंठ में भी तीन लक्ष्मी हैं,
श्री भूदेवी श्री भू लीला
लीला शक्ति और
श्री,
ये तीनों लक्ष्मी
शक्ति
और बतला रहे हैं। पूर की महिलाएं हैं उनको भी लक्ष्मी कहा जाता है। उस प्रसाद को कृष्ण मुझे प्राप्त नहीं हो सके, लक्ष्मी नितांत रथे सब समय उनके अंगों की सेवा में निरत रहने वाली, चाहे वो पाए अपने यहाँ पर दस्तक्षर पर लेकर के पलोटें अथवा उनके पक्ष पर विलास करते, सब समय उनके अंगों में रत हैं, दस्तक्षर में दक्षिणी रुमावली के रूप में या जी रूप में। लक्ष्मी जी को वो प्रसाद नहीं मिला। स्वर जोशिता स्वर मैंने यहाँ पर बैकुंठ भी बतलाया और स्वर मैंने स्वर्ग तो है ही है, स्वर मैंने यहाँ पर बैकुंठ जोशिता बैकुंठ की जो लक्ष्मी है लक्ष्मी है। नलिन गंधरु चांद, नलिन मैंने कमल, नलिन गंध, नलिन के समान गंध, रुचान माने कांति, उनमें सुगंध है कैसी उन लक्ष्मियों में कमल सी, और उनमें गंध तो है कमल जैसा और कांति कैसी है कमल जैसी, कैसे कमल होता है सादा नहीं मैंने कुछ गुलाबी भाव, गुलाबी भाव अत्यंत सुंदर और कैसा कोमल, कैसा कमल की भांति कोमल मृदु मनोहर सबको आकर्षित करने वाला, भवरे तक की आकर्षित
कोमल के 100
पंखुड़ी
एक सूर्य के द्वारा घूमने में जितना समय होता है
उसमें तो ये
कोमल होता है।
ऐसा लक्ष्मी, ये लक्ष्मी है कांति उनसे अपने आप निकलती है। यहाँ तक तो सेंट इतर लगाना पड़ता है, वहाँ पर सेंट इतर की कोई जरूरत नहीं है, खुशबू अपने आप आती रहती है। जब उन्होंने ही कृष्ण की ऐसी कृपा क्यों नहीं लाभ की तो कुतो अन्य संसार की और दूसरी या देवताओं की दूसरी जो स्त्रियाँ अप्सराएं इत्यादि हैं इनकी तो बात ही क्या, उनको तो कैंसिल पहले ही कर दी। इसमें स्वर जोशिता इसको भी लिया जा सकता है जो देवलोक में हमारे हयग्रीव हैं, वामन जी हैं और जिसने अवतार हैं उनकी जो लक्ष्मियाँ हैं उनके रीति हैं। इसमें हुआ पहला, एक अन्य ये साधारण जो सुंदरी से सुंदरी स्त्रियां हैं जगत की, दूसरी देवताओं की स्त्रियां, तीसरी अस्पराएं, चौथी देव माने विष्णु की जो लक्ष्मियां और फिर नारायण के पास में रहने वाली लक्ष्मियां, इनको तो बात ही क्या, फिर वहाँ द्वारकापुरी की महिलाएं लक्ष्मियां श्री शतनिंद पट्ट महेश प्रभु खेलती, लक्ष्मी जी से भी लाखों कोटि सुंदर और महिमा में ये बड़ी है। कौन? सप्तधामा इत्यादि, उनको भी वो कृपा नहीं मिली कृष्ण की, क्या कृपा? उसी के लिए बतला है, रासो सवे अश्य भुजदंड गृही तकंठ, रास के समय में नित्य करते 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 कृष्ण अधीर होकर के उनकी कृपा मांगते हुए कृपा की वांछा करते हैं और उनके गले में अपनी सुंदर सुगंधित सताकृति बाहु को लगाते हैं। कहाँ ये उनके गले में डालेंगे? हाँ, ऐसा ना कर करके कृष्ण ने ही उनकी कृपा के लिए ऐसा मांगा, ऐसा किया। और कहीं कहीं पर हमारे गोस्वामियों के श्लोकों में ऐसा है कि आप प्रसिद्ध, आप कृपा करें हमारे ऊपर, अखरिपुरपी दिव्या प्रसाद, दिव्या मने श्रीमती राधिका जो देवी हैं उनकी कटाक्ष की कृपा करने के लिए, कटाक्ष से भी कृपा करने इसके लिए अनुबंध हो करके मने व्रत धारण करके प्रतिदिन राधा कुंड में वास करते हुए स्नान करके उनके नाम का मंत्र जपते हैं। राधा कुंड
संकुण जगति विमल नीरे तीर्थ रूपे प्रशस्ति तवं कुल प्रसंगी स्थान मत्तै वराधे इति विनय वचवी प्रार्थना कृष्ण कृष्ण।
इस तरह से वो प्रार्थना कर रहे हैं कृष्ण मां, तुम हमें छोड़ करके मत जाना है। इस भावना से लब्धाशीशान, लब्धाशीशान माने इस आशीष को लाभ किया। कौन? गोपियों। और इसको दूसरे रूप में भी कर सकते हैं, जिस कृष्ण ने जिस चीज की अभिलाषा की किस लिए, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो कृष्ण ने उस आशीष को उनसे प्राप्त किया, लब्धाशीषं, इस रूप में भी कर सकते हैं। मनोरथ को पूर्ण कर दिया उन्होंने, कृष्ण के मनोरथ को। इसी में सम्यक रूप में सार वासना कृष्ण की श्रृंखला के रूप में काम करती है, राशि सर्वोत्तम लीला है। संसार बद्ध श्रृंखला,
संसार वासना बद्ध
श्रृंखला, संसार माने सम्यक रूप से सार जो है वासना,
प्रेम वासना
कृष्ण की, प्रेम को उनसे प्राप्त करेंगे गोपियों से, हमारी अभिलाषा पूर्ण हो, इसलिए ये सम्यक रूप से सार वासना कृष्ण की है। उस वासना को पूर्ण कौन करती हैं? ये गोपियां करती हैं, इसलिए इसको संसार वासना कहा गया। इसलिए इसको कोई भी नहीं प्राप्त कर सका। फिर एक दूसरा उदाहरण देते हैं, किस लिए? इसलिए कहते हैं, जैसे राधिका जी के सौंदर्य के लिए बतलाता है रूप गोस्वामी, तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर की मुख प्रभा परास्त कोटि सार बिंदु, उनका तड़ित सुवर्ण चंपक, ये तीन प्रकार की उपमा। तड़ित, राधा जी का अंग कैसा है? तड़ित के समान अत्यंत सुंदर पीत वर्ण है, किंतु इसमें आग है, क्षणिक है,
जड़ है
और जड़ है, इसमें सुगंध नहीं है, इसलिए इसको बाइकॉट कर दिया। तड़ित
सुवर्ण,
सुवर्ण स्थिर है, वो जल्दी से विद्युत की भांति चमक करके नष्ट नहीं हो जाता है, तो स्थिर, किंतु इसमें अपना कोई सुगंध नहीं है, है जड़ भी,
कोमलता नहीं
है और कोमलता भी नहीं है, मृदुता नहीं है, माधुर्य नहीं है, इसलिए इसको भी छोड़। अब तीसरा क्या आ गया है?
चंपक
पुष्प। चंपक कैसा होता है? चंपक देखा है, बड़ा पीला, बहुत सुंदर मृदु पीला, और बहुत ही मधुर गंध और सुंदर कोमल मृदु होता है और पीला भी होता है।
शिव कुमार जो है
सब कुछ है किंतु है जड़, बस इसमें यही एक है जड़ किंतु इसमें समस्त कुछ है, इसलिए तीनों मिला करके भी पूरा नहीं कर सका, कोई उपमा ही नहीं उसके लिए है चंपक, इसलिए एक एक कह करके भी पूरा नहीं उनका वो एक कहते हैं तो
उत्तरोत्तर श्रेष्ठ वस्तु को लिया,
उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है, फिर अंत में चंद्र को ले लिया, उनका मुखमंडल कैसा है
शरद इंदु,
शरद इंदु के समान अत्यंत सुंदर, उसमें चेतनता भी है, चेतनता भी है, हर्षप्रद भी है, उसमें सब कुछ है, उसमें अमृत भी है, इसलिए उस थोड़ी सी क्षमता का किंतु वो भी पूर्ण क्षमता नहीं कर सकता। तासाम आविर्भूत सौरे सौरी स्वयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धर सगरी साक्षात मनमथ, इस रूप को देखने का किसी को अधिकार नहीं है न द्वारका वाली को न वैकुंठ वाली को, ये सब जीतती हैं, किसी को अधिकार नहीं, ये रूप कौन देखेगा, मनमथ केवल गोपियां ही दर्शन कर सकती, और कोई दर्शन नहीं है, नहीं अधिकार, जिसके अंदर में प्रेम सर्वोच्च स्थिति में असीम रूप से वर्तमान हो, जिसमें महाभाव से आरंभ करके ऊपर वाला कुछ हो, वो लोग इस रूप को दर्शन कर सकते हैं और ये प्रकट ही नहीं करेंगे। एक व्यापारी है कपड़े का, जब दुकान में जाते हैं तो हम कहते हैं कि भैया हमको एक साड़ी दिखलाओ, तो वो पहले घटिया किस्म की दिखलाएगा और 5 लाइट जला देगा चक 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 करते हैं और कहेगा जे यहाँ से ये हमने मंगाया बम्बई की है, कोई कहेगा यहाँ से, कोई लिवरपूल से दिखलाएगा, पसंद अच्छा और बस यही था, नहीं नहीं हमारे पास और तो और एक दिखलाया, फिर एक और दिखलाया, अंत में दिखलाता जब भी उसे अंतिम दिखला दिए ना तब से मन नहीं भरता तो पुरानी वाली दशक फिर एक लेगा, ये कहा गया कि ये सबसे अधिक श्रेष्ठ है पुरानी वाली भी, और किसी न किसी प्रकार से उसका मन बजा कर
फंसा देगा
और फंसा नीति देता है, फंसा ही देगा प्राय यदि चतुर्थ होगा। एक एक करके उद्धव जी को ब्रज में भेजा, उद्धव जी गोपियों को संवाद दे रहे हैं, पहले घटिया संदेश कहा, इसके बाद में बढ़िया संदेश कहा, उसके बाद में उससे भी अच्छा था, गोपियों को कोई भी मन नहीं भाया, अंत में कहा जी हमारे पास में कृष्ण के बहुत से संदेश हैं, अच्छा आप सुनिए, तो इसी तरह से सब तो उसी तरह से यहाँ पर ये सबसे जो सुंदर अंतिम रूप जो मनमथ मनमथ है ये गोपियों के लिए ही क्यों संभव, दूसरों के लिए वो दर्शन कितना बजा
सवा सात
तासाम आविर्भूत सौरी, सौरी किस लिए कहा, गोपियां ये सुखदेव जी कह रहे हैं ना, सुखदेव गोस्वामी पर, सुखदेव गोस्वामी को बड़ा क्रोध आया कृष्ण पर, गोपियों के पक्षधर हैं ना, अजी गोपियों को इतना तरसाया और इतना भ्रमाया, इनको व्याकुल कर दिया, न घाट का घर का रखा न घाट का, और इतना रुलाया इसलिए इनका मन बड़ा खराब हो गया, कृष्ण भगवान ये तुम बड़े निश्चित, ये क्षत्रिय कुल में जन्म लेने से ही ऐसा हो सकता है, इसलिए निश्चित में तुम सौरी पुत्र है, इसलिए कठोरता के लिए उनको कुछ क्रोध हो गया, राग हुआ और राग होकर के तब उन्होंने ऐसी कठोर भाषा का प्रयोग किया, तुम ब्रज के नंद नंदन नहीं हो, तुम जसोदा नंदन नहीं हो सकते, जसोदा तो बड़ी प्रेम से पीजी रहती है, वो बड़ी दयालु है, नंद बाबा बड़े दयालु, इसलिए कभी भी आप गोपुत्र गोपेंद्र नंदन कभी नहीं हो सकते, आप निश्चित ही सौरी, तब सौरी जी ने क्या किया, ताशा मापी तू, कुछ लज्जित से होते हुए, कुछ मुस्कुराते से होते हुए, मानो मेरी गलती हो गई, मेरी इस गलती को तुम लोग ग्रहण। इतना दिव्य सुंदर धारण किया जो भी आज तक कभी नहीं किया। मनमत को भी मनमत करने वाले ऐसे रूप, स्मयमान मुख अंबुज है किंतु कैसा है वो स्मयमान
लज्जा
लज्जा अब फूट रहा है, फूल
खिल रहा है,
अभी खिल रहा, पूरा खिला नहीं, अभी कली से थोड़ा सा भी संकुचित किंतु फूटने वाला है, मन संकुचित कुछ पुष्ट है। ऐसे कृष्ण कुछ मुस्कुराते हुए पीतांबर को धारण करते हुए श्रग्वी, श्रग्वी मैंने क्यों कहा
माला,
केवल माल्य धारण करने के लिए नहीं, इसलिए कि वही माला जिन गोपियों ने पहनाई थी राधा जी का उच्छिष्ट माला, उनकी उच्छिष्ट माला राधा जी और गोपियों ने कृष्ण को पहनाया था, उसी माला को लेकर नहीं मैं तुम्हारे ही अधीन हूँ, तुम्हारी दी हुई माला को मैं धारण करता हूँ, मैं तुम लोगों के प्रति अपराधी नहीं हूँ। ऐसे लोगों को कहा जाता है धृष्ट नायक। धृष्ट नायक किसको कहते हैं? सब लक्षण हैं जो कहीं और गए, और तभी इतना धृष्ट बाचाल मानेगा नहीं, नहीं हमने कोई अपराध नहीं, मैं तो बहुत सारे सीधा अभी आपसे ही मिलने के लिए आ रहा हूँ। ऐसी भावना से युक्त यदि होगा कोई तो उसको धृष्ट कहेंगे, इसलिए यहाँ पर धृष्ट हंस भी रहे हैं, अरे लज्जा होनी चाहिए ना उनको,